ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद, परमानंद, परमानेंट आनंद, परमानेंट आनंद किनको मिलता है? जो सच्चिदानंद के साथ सच्चा गोल्ड बन के रहते हैं, रियल गोल्ड, रेड गोल्ड नहीं, किसी भी प्रकार का बहाना, एक्सक्यूज, बिकॉज, बट, ये बट, बिकॉज, रीजन देने वाले नहीं, पर चिंतन वाले नहीं, सच्चे सच्चे स्वचिंतन, प्रभु चिंतन और सत्योगी संस्कार वाले सत्व प्रधान आत्माएं बाबा के प्यारे हैं, दूसरों को भी प्यारा, प्रभु प्यारा बनाने वाले हैं। वो कौन ऐसी आत्माएं जिनमें ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, नफरत, क्रोध, सूक्ष्म कोई भी एलॉय नहीं हो, आकर्षण नहीं हो, इन्फ्लुएंस नहीं हो, प्रभाव से अभाव अपने में न डाला हो, सच्चा सोना, और सोना फिर हीरे को आकर्षित करते हैं, प्लास्टिक पर हीरा नहीं लगाया जाता, लोहे पर हीरा नहीं लगता है। तो सच्चे संपूर्ण पवित्र शुद्ध आत्माएं भगवान के सहयोगी बनते हैं और कर्म इंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत बनने वाले बाबा के प्यारे बच्चे। पहली तारीख की मुरली सुनते हैं, आज दादी जी का मंत्र शुरू होता है, दीदी जी का मंत्र पूरा हुआ। दीदी जी की अपनी विशेषताएं विशेष थी, दादी जी की अपनी विशेषताएं विशेष थी, सच्चाई, सफाई, उत्साह, उमंग, तो सर्व प्रिय, प्रभु प्रिय, परिवार प्रिय बनने वाली और बनाने वाली संपूर्ण पवित्रता की दिव्य मूर्ति। और तो फिर समय पर दादी जी की रोज की शिक्षाएं सुनते रहेंगे, पर अभी सुनते हैं पहली तारीख की मुरली, बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं, कॉन्स्टेंट करते रहते हैं, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, वो हाथ से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः ही शीतल हो जाती हैं। दूसरी बात, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये स्मृति सत्य रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का तीसरी बात, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है। दो प्रकार का नाम रूप है, किसी के नाम और रूप में फंसना, अटैचमेंट, इन्फ्लुएंस, आकर्षण, और दूसरा नाम रूप का नशा, मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मेरी फोटो सामने आवे, मेरे चित्र का अभी से पूजा होवे, ये नशा। तो नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरों की याद नहीं आती। एक बाबा के सिवाय गीत है, तू प्यार का सागर है, ओम शांति। बाबा कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है, एक्चुअली सर्व गुणों का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। क्यों कहते हैं? इग्नोरेंस इज रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। अज्ञान माना दुख, भटकना, अंधकार। आधा कल्प है ज्ञान की प्रलबद, आधा कल्प है फिर अज्ञान की प्रलबद। अज्ञान की प्रलबद क्या है? दुख। ज्ञान की प्रलबद है न केवल सुख, पवित्रता, सुख और शांति, स्वराज्य। ज्ञान की प्रलब्ध सुख है। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। दिन है ज्ञान का, रात मना अज्ञान, अंधकार, ये किसी को भी पता नहीं है। तो ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, ये बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम क्या बन रहे हो? ज्ञान से क्या बन रहे हो? पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। ये भी तुम जानते हो कि मंदिर आदि हैं सब, ये पूजनीय मूर्त की यादगार है। उनकी जीवन कहानी को भी तुम जानते हो। जो पूजा करने वाले हैं, पूजा करने जाते हैं, वो खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। भगवान आते हैं फिर भक्ति का फल देने के लिए, और फिर वो भगवान ही ज्ञान देकर, भक्ति का फल है ज्ञान। तो भगवान आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में और पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, आज के संसार की हालत क्या हो गई? भगवान कितना पावन से पतित बन गया, निर्विकारी से विकारी बन गया, संपूर्ण पवित्र से संपूर्ण अवित्र पतित बन गया। तो आज तुम जानते हो, फिर ये भी तुम जानते हो पूज्य सतयुग में पुजारी कलयुग में होते हैं। विनाश तो जरूर होने का है और कोई भी समय हो सकता है, तैयारी हो रही है। गाया भी हुआ है, अनेक कुदरतें कुदरती अपनाएं होती हैं, ये तो लिख देना चाहिए। जो ये जो ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं, नेचुरल क्लाइमेटिस को गॉडली क्लाइमेटिस कह देते हैं, ये ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, इनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, गॉडली क्लाइमेटिस नहीं कहेंगे। ये तो ड्रामा की नींद है, ये नेचुरल क्लैमिटी सब आने वाली हैं। बाबा ने कहा था पांचों तत्व इकट्ठे डांस करेंगे, समुद्र उछलेगा, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, अर्थक्वेक होगा, अग्नि के बम से अग्नि से सब मनुष्य आत्माएं पुरानी सृष्टि भस्म होगी। तो बाबा कहते हैं विनाश में ये मदद करेंगे, सफाई करने में। तो परंतु है कुदरती आपदा है, ड्रामा की मूंद है, जिसमें नेचुरल क्लैमिटी सब आने वाली है और ये विनाश में यानी सृष्टि की सफाई में मदद करेंगे। बहुत समझने की बात है, जबकि पॉइजन से, एटॉमिक एनर्जी से, ग्रह युद्ध से इतने मनुष्य मरेंगे तो वातावरण कैसा होगा? बहुत जहरीला होगा, तो सृष्टि की शुद्धि कैसे हो? तो मूसलाधार बरसात पड़ेगी सफाई करने के लिए, मूसलाधार बरसात पड़ेगी। और पैसे पहले, उससे पहले भी कलेमिटीज आएंगी तो मनुष्य भूखे मरेंगे, अर्थ को एकादी सब आने की है, क्योंकि इन द्वारा ही विनाश होने का है। अभी ये भी एक सूक्ष्म राज है, जिनके अंदर स्वभावना होती है कि हमको, हम शरीर जब छोड़े ना तो हमारा अग्नि संस्कार जरूर हो, शरीर जले, फिर हमारे फूल गंगा जी में जाए। कोई कहेंगे नहीं, भगवान वहां से कब्र से निकाल के ले जाते हैं, अब उनकी आश कैसे पूरी हो? अर्थ कोई कहेगा वो दब जाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म एस्पेक्ट है, प्राकृतिक आपदाएं कैसे सृष्टि के परिवर्तन में मनुष्यात्माओं की भी कामना पूरी करती हैं और नई सृष्टि की सफाई भी करती है। इसमें नहीं है ये लिखा हुआ, पर मैं मतलब बाबा की बताई हुई बात किसी समय विचार सागर मंथन से मुरली के आधार से उस पर बता रही। तो बाप कहते हैं ये इन द्वारा विनाश होने का ही है, मदद करेंगे ये पांच तत्व, ये ड्रामा की नींद है, इनके द्वारा ही विनाश होना है। तुम बच्चे जानते हो ये तो जरूर होने का ही है, पर टोटल प्रलय नहीं होती, विनाश होता है। भारत अविनाशी खंड है, इस मुरली में अभी नहीं है, पर बाबा ने कई बारी बोला है। नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे? जरूर इकट्ठा विनाश होगा ना, बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। ये मूसलाधार बरसात पड़ेगी और सफाई करेंगे तो ये कपड़े धोने आएंगे, पांच तत्व धुलाई करने आएंगे, देहद की वॉशिंग मशीन सब कपड़े धोए जाएंगे, ये देहद की मशीनरी है। तो इधर बाबा भी धुलाई करता है, धोबी बन के आता है, उधर प्रकृति भगवान को ये मदद करती है। तो भगवान हमारे परमात्मा जीते जी ये जो पांच तत्व का हमारा शरीर है ये बहुत गंदा हो गया। तो ग्रंथ साहब में आता है सिख धर्म में, मूत पलीती कपड़ हो दे सबून लइए धो। ये पुराना शरीर गंदा गंदगी से पैदा हुआ है, हे भगवान साबुन दे दो हम साफ हो जावे। परंतु उसको फिर से पापों से मैला नहीं करो, भरिए मत पापों के संग। अच्छा धोएंगे कैसे, साबुन में जल कौन सा चाहिए, परमात्मा की याद का जल चाहिए। तो इधर परमात्मा भी धोबी बन करके हमारे तन मन को साफ करता है, प्रकृति भी वॉशिंग मशीन बन करके परिवर्तन करती है। इसलिए भगवान की मददगार है ये बड़ी मशीनरी है। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं, गाया जाता है मूत पलीती कपड़ हो, ये कोई जब इस कपड़े की बात नहीं है, शरीर कपड़ा पहना हुआ है, आत्मा ने जो कपड़ा पहना हुआ है, आत्म तजे काया तैसे जीर्ण वस्त्र छोड़े, जैसे पुराना कपड़ा जैसे छोड़ते हैं। तो हमारे श्रेष्ठ कर्म, हमारी दृष्टि वृत्ति कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां उसको बाबा शुद्ध करता है, सफाई करता है। तो हमारी भी धुलाई हो रही है रोज, ये रोज बाबा ज्ञान बरसात बरसात, पर प्यार की बरसात है जिससे हम पवित्र और शुद्ध बनते हैं। पहले स्वच्छ बनते हैं, फिर शुद्ध बनते हैं, फिर पवित्र बनते हैं, फिर पावन बन के घर जाते हैं, सच्चा सोना बन के। ये तो ये इस कपड़े की बात नहीं, या कपड़ा जो पहना हुआ है ये तो शरीर की बात है। अच्छा अभी धुलाई तुम धुलाई कर रहे हो, अपना कपड़ा कैसे धोने है, शरीर रूपी कपड़ा, ये कपड़े का कपड़ा तो दूसरी मशीन धो लेगी, कैसे धोएंगे। योग बल से धोना है, कर्म योगी बन के। इस समय पांच तत्व तमो प्रधान है, शरीर भी ऐसे ही बनते हैं। तो पतित पावन आकर के पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, बाबा रास्ता बहुत सहज बताते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। जहां जहां भक्ति यज्ञ होते हैं वहां जाके समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो, मनुष्य से देवता। जिन्होंने देवताओं ने जीवन मुक्ति कैसे पाई तो आओ तो समझो, तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन मुक्ति सब जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे, तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते, अब सर्वव्यापी का तो कोई जीवन कहानी थोड़ी हुई। तुम बच्चे कि अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी परमात्मा हमको ज्ञान का सागर, ज्ञान का सूर्य, पतित पावन, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, वो करते क्या है, वो आते कब है, वो कैसे आते हैं, कितना गुप्त नजर नहीं आता, प्रकरण करवानार करता सब कुछ है, पावन बनाता है। तो उनकी जीवन कालीन परमात्मा की बायोग्राफी, परमात्मा का कर्तव्य। बायोग्राफी लिखते हैं तो विशेष विशेषताएं क्या है वो लिखते हैं। इस समय आदि, यह अभी समय है आदि का, तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, अंत का समय भी है, आदि भी हो रही है नई सृष्टि की। तुम स्वच्छ सुंदर कपड़े बन रहे हो आत्मा शरीर, और पुराना विनाश भी हो रहे, जबकि बाप आकर पतितों को पवन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ शुरू होता है, तो बाप कहते हैं इस समय में आकर के स्थापना कराता हूं, करता हूं और कराता हूं। द्वापर में भक्तों को भक्ति का फल साक्षात्कार कराता हूं, करण करावन हारू, साक्षात्कार तो कराता हूं, आता नहीं हूं, ज्ञान प्रेरणा से नहीं दिया जाता, साक्षात्कार करा लेता हूं पर ज्ञान ऊपर बैठे नहीं देता हूं। करण करावनार हूं, प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, तो बाबा आकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कराते हैं, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। जब करण करावन हार कहते हैं तो जिनसे कराएंगे उनके सन्मुख चाहिए ना, करण करावन हार किनसे करवाएं, तो इसलिए बच्चों से कराते हैं, ब्रह्मा तन में आके कराते हैं। प्रेरणा से कुछ नहीं हो सकता, आत्मा शरीर बगैर कुछ नहीं कर सकती। बहुत कहते हैं ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा भगत माताएं कहती हैं बाबा आप प्रेरणा करो ना, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं इसमें प्रेरणा की बात नहीं है, बाबा को तो आके काम करना पड़ता है। आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़े तो तुम बाबा का अपना संबंध परमात्मा से जोड़ो, तो वो योग की शक्ति उनको मदद करेगी। भोजन शुद्ध बना के खिलाओ, बुद्धि बदलेगी, प्रेरणा की बात नहीं। भगवान खुद आते हैं इसमें, नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? शिव जयंती है तो परमात्मा का आना हुआ ना, इसीलिए प्रेरणा से काम हो तो फिर आए क्यों? मनुष्य एक तो ईश्वर क्या चीज है ये नहीं जानते, हाँ सिर्फ क्या देते हैं, प्रेरणा से सब कुछ होता है, मेरा काम प्रेरणा से कैसे करेंगे? नहीं, वो करण करावन आ रहे, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म करेंगे सब तो फल मिलेगा ना। प्रेरणा करके काम तो करा लिया तो उसने किया ना, तुम्हारे द्वारा करवा करके तुम्हें कर्म का फल देते। परमात्मा को भी करना पड़ता है कर्म, मुरली चलाते हैं, बोलते हैं, पढ़ाते हैं, तो कर्म किया ना, आके रास्ता बताते हैं, कर्म इंद्रियों से मुरली चलाते हैं, मुख ज्ञानेन्द्रिय आंखें दृष्टि देते हैं, हाथ से टोली खिलाते हैं, कर्म इंद्र से कर्म किया है ना। कर्म इंद्रियों का आधार न लेवे तो मुरली कैसे चलाए। ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सूर्य है, तो मुख बगैर सुनाए कैसे। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्यंत का पता है, पूरी नॉलेज मिली है, समझते हैं ज्ञान बगैर गति नहीं है। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं तो अज्ञान है अंधेरा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति जीवन मुक्ति कह सकते हैं। योग विज्ञान है, तुमको पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा ही संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य देवता बनते हो, अच्छा तो वहां ज्ञान के संस्कार रहने चाहिए ना। ये बाबा थोड़ा बता रहे हैं, ज्ञान नहीं जाता साथ में, ज्ञान से तुम्हारी कर्म इंद्रियां शुद्ध होती हैं, प्रकृति सत्व प्रधान बन जाती है, संस्कार आत्मा का नेचुरल व्यवहार बन जाता है। मैं सो आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, योग लगा के वर्षा लेना है, वो सतयुग में नहीं होता। सृष्टि के आदि मध्यम के ज्ञान की याद नहीं रहती। मनुष्य कहते हैं देव मनुष्य देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए ना, पर बाबा कहते हैं देवता तो प्रलब्ध है तुम्हारे संगम युग के पुरुषार्थ की। मनुष्य देवता बनते हो ये पुरुषार्थ की प्रलब्ध है, प्रलब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है। सतयुग ही सतयुग है ही तुम बच्चों की प्रलब्ध। ये बातें जब मनुष्य सुनते हैं तो वंडर खाएंगे, ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा अगर वहां याद रहे हम गिरेंगे, पतित बन जाएंगे, तो वो जो आनंद नेचुरल जीवन सुख है वो नहीं रहेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको समझानी दो अच्छी तरह से। बाप कहते ही प्राय लोप हो जाता है, क्यों कि जब सूर्य चढ़ गया तो अंधेरा नहीं रहेगा ना, अंधेरे को ढूंढेंगे। चढ़ गया सूर्य तो कहेंगे अंधेरा अंधेरा, तो सूर्य चढ़ा ज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए। प्रलब्ध मिली तो फिर पुरुषार्थ नहीं करने की बात है। बहुत सुंदर एग्जांपल है, दिन हो गया तो अंधकार है ही नहीं, अज्ञान तो है ही नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। सूरज चढ़ा हुआ हो और आप लालटेन लेकर के मोमबत्ती जगा के चलो, टॉर्च उठा करके फोन की लाइट जला के चलो, कोई सेंस है क्या? भगवान कहते हैं सूर्य ज्ञान का प्रलब्ध मिल गई तो मां ज्ञान नहीं लेते। ये समझने की बात है, ये मिसाल मोमबत्ती की सूरज की मैं देरी इसमें लिखा हुआ नहीं है, पर बाबा ने समझानी दी है समझा रही। कोई फिर मुरली देखते हैं ना कहेंगे इसमें तो वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है परंतु एक्सप्लेनेशन दे रहे हूं। तो बात कहते हैं समझने की और समझाने की बातें हैं, फट से कोई समझ भी नहीं सकते। शिव बाबा भारत में आते हैं बच्चों के लिए सौगात लेके आते हैं, भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति के बाद सदगति है, तो ये विनाश, पुरानी दुनिया विनाश तो जरूर होगी। बाप कहते हैं दिन हो गया, बच्चों को सौगात मिल गई, पुरानी दुनिया का विनाश तो हो नहीं है, या आसार सामने खड़े है, नवा बनाया बन गया, तुम देवता बनने उठते तो पुराना तो विनाश होगा ना। तुम सुनते रहोगे, चिंगारी लगती है तो दो घंटे, एक दो घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। विनाश हुआ तो फिर फौरन सब विनाश होगा, अभी तो रिहर्सल हो रही है। ये तो मकान जलकर भस्म हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है, विनाश तो होना है जरूर। सतयुग में होते हैं थोड़े मनुष्य और वो है श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठाचारी बनने में मेहनत लगती है। बन गए, डिग्री पास कर ली, फिर थोड़ी पढ़ाई पढ़ने की जरूरत है। अभी यहाँ श्रेष्ठाचारी बनते बनते माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, श्वास, मान शान नाम, मेरी नाक कट गई, मुंह दिखाने लायक रही, ये नाक कट गई, एकदम नाक कान काट देती है। गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है ना, बड़े से बड़ी चोट है काम विकार की, इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है, यही पतित बनाता है। झगड़ा होता विकार के लिए, परंतु जो पक्के हैं, भले झाड़ू पोछा लगाएंगे कहां, फ्रीडम अपने फ्रीडम के लिए, परंतु पवित्र जरूर रहेंगे बंधन मुक्त होने के लिए। इसीलिए हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। बाप की शरण में आते हो तो फिर माया से लड़ना भी जरूर पड़े, माया को भी जीतना पड़े। पांच विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है, पर पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। तो पहले तो पक्का पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए, जीते जी मरे हुए हैं, यहां से लंगर उठ गया है। कलयुगी दुनिया विकारी किनारा छोड़ दिया है तुमने, अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम अशरीरी अपने घर जाते हैं, ही अंदर अभ्यास चाहिए। आत्मा को ये ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे, हम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि ये कब्रिस्तान है, फिर सुखधाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं, पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं, याद से विकर्म विनाश होंगे तो आत्मा शरीर छोड़ेगी। देखो ये यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाबा को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो, इतनी सहज बात भी याद नहीं रहती है। अल्लाह को याद करो बस, परंतु माया वो भी याद नहीं करने देती, मेहनत लगती है। अब तुम आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है क्या, हमारा बाबा आया हुआ है, हम परमात्मा पढ़ रही है। आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है, आत्मा भाई भाई है, पर फिर देह अभिमान में आने से अनेक संबंध में आ जाते हैं। पर आत्मा को ये याद रहे, हम आत्मा आपस में भाई भाई भी है। शरीर में है तो भाई बहन है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो दोनों को वर्षा चाहिए, बहन को भी चाहिए तो भाई को भी चाहिए, पुरुष को भी चाहिए तो स्त्री को भी चाहिए। शरीर नहीं है, दे अभिमान ही नहीं रहा, विकार की इच्छा कैसे पैदा होगी? शरीर से न्यारे हो गए तो विकार किससे करेंगे? हम आत्मा है, बाप के पास जाना है, इतना आत्मिक स्थिति रहे जो शरीर का भान ही न रहे। वो कैसे होगा? जितना योगी बनते जाएंगे, ये जो शरीर की कर्म इंद्रियां हैं, ये शीतल होती जाएंगे। वो आग अंदर तड़फाएगी नहीं, जलाएगी नहीं। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल होती हैं। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है, शरीर से अलग होते जाएंगे, कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। वो सन्यासी लोग तो दवाई खा के, वो जड़ियां बूटी जड़ी बूटी खा के कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं। वो तो हठ योग हो गया ना, तुम तो योग से का, तुमको योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो? जितना आत्माभिमानी होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगे। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अब प्राप्ति भी तो ऊंची है ना। बाबा कहते हैं तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो ना, तो जरूर इतना बल चाहिए ना। कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तो मनुष्य देव याद रखो, मनुष्य देवता बनते हैं, पतित से पावन बनते हैं, प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना, तो योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो। बाहुबल हिंसा के बल से नहीं, मेहनत की तो कोई बात ही नहीं है। अब कुमारियों को विशेष याद, कुमारियां बाप कहते हैं मेहनत की कोई बात नहीं, कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत है ही नहीं, माताओं को मेहनत करनी पड़ती है। फ्री है कुमारियां, फिर विकार में गए कुमार कुमारी तो बड़ी पंचायत हो जाती है, बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। कुमारी रहना अच्छा, कुमार रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमार, अधर कुमारी नाम पड़ जाएगा ना। कुमारी है तो खुमारी चढ़ी हुई है, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं ज्ञान गंगा हूँ। युगल युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, ये भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी और बहुत बड़ी मेहनत चाहिए, ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा चाहिए। बहुत हैं जो हिम्मत रखते हैं परंतु आग की आंच आ जाती है, खेल खलास। हम पवित्र रहेंगे, हम दिव्य रहेंगे, नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी, अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों गाना चाहिए। टाइम होता है मुरली देर से शुरू हुई है। बाबा के कमरे में हम बैठे थे तो हमारे साथ एक बहन थी, गंधर्वी विवाह हुआ था। दीदी ने कहा बाबा ये एक कुमारी है सुदेश, ये अभी शादी हुई, गंधर्वी विवाह है, पहला एग्जाम्पल था, तो किसका पार यानी ऊंची चीज क्या है। बाबा ने कहा अगर मानो मिसाल के तौर शुक्ला बहन थी, कहेंगे ना शुक्ला सुंदर लाल की शुक्ला, सुदेश शिव बाबा की सुदेश, तो फर्क नशा चढ़ेगा ना। तो फर्क हो गया उसमें, जिसके साथ शादी हुई उसका नाम याद आ जाएगा, तो याद करेंगे ना शुक लग, अच्छा चलो सुंदरी कौन सी सुंदरी है, लक्ष्मण सुंदरी, तो दूसरे को याद करेगा ना युगल याद आ जाएगा, या तो बाबा याद आएगा। ये बाबा बिल्कुल बाबा के कमरे में बैठी बात, तो इसलिए कुमारियों का नाम बाल है, बाल ब्रह्मचारी कुमारों को भी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी रहना है, अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। हाँ हिम्मत करके दिखाओ, हिम्मत रखो, मेहनत है, अगर दूसरे कोई को आ गई ना बीच में तो दो हो गए ना, तो द्वैत पड़ जाएगा, द्वैत डुअलिटी आ गई, बाबा बीच में से फिर निकल जाएगा। तो कुमारी तो अकेली है, दो है तो द्वैत हो जाता, तो जहां तक हो सके कुमार चाहे कुमारी दोनों के लिए बाबा सिम बात है, कुमारी सेवा पर निकल सकती है, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए, चाहे कुमार हो चाहे कुमारी हो, द्वैत लाना ही क्यों चाहिए, जो ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो फंस पड़ो, तो ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, कुमारियों ने ही नाम निकाला है, कृष्ण की कन्हैया, कन्हैया कहा जाता है कृष्ण कृष्ण को, कन्हैया नाम गाया जाता है। सामने बाबा की कुमारियां बैठी होंगी उस दिन, पर बात तो बाबा की कुमार और कुमारियों की एक ही है। इन्होंने ये बहुत सहज है, स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को क्या बनना है, कुमार कौन कौन कुमार बैठे हैं, अरे ये तो ढेर कुमार है, कुमारों को भीष्म पितामह बनना है, बाल ब्रह्मचारी, और कुमारों को शिव शक्ति बन के रहना है। कल पहले भी रहे तब तो दिल बड़ा मंदिर में यादगार है, बुद्धि फ्रेश रहती है। अच्छा बाप बच्चों को फरमान करते हैं मुझे याद करो और बातों को छोड़ दो, अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है, भूल चूक होती है फिर बच्चे गिर पड़ते हैं, तो पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरे के चिंतन में नहीं जाओ, चिंतन माना खोट पड़ गई तुम्हारे में भी, तुम सच्चा सुनना बन जाओ, औरों को रास्ता बताओ। सत्व प्रधान बनने का एक ही उपाय है, कौन सा? 52 बनने बगैर मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। उपाय एक ही है, अंतमति सुगति हो जाएगी। एक को याद करना है, वो गिर गया, वो चढ़ गया, वो ऐसा है, ये ऐसी है। इसको कहते हैं झरमुई झंगमुई, जंगल में फंसे, जाल में फंसे, खुद मर गए। झरमुई झंगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करोगे। ये बाबा कोई श्राप नहीं दे रहे, सावधानी दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, श्राप नहीं दे रहे। श्रीमत पर नहीं चलते हो तो अपने को श्रापित करते हो। बाबा श्राप नहीं देता, बाबा श्रीमत देके सावधान करके समझाते हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, दूसरों का चिंतन छोड़, अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झंगमुई गॉसिप, तेरी मेरी बातें, गॉसिप निंदा चुगली को कहते हैं झरमुई झंगमुई। दूसरों का चिंतन छोड़, बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झंगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। क्या करना है? योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। वरदान, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, अच्छा, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले, निश्चय है, निश्चय पक्का रखने वाले, निश्चिंत भी है तो निश्चित भी है, निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, दूसरी बात स्वयं के पार्ट में, तीसरी बात ड्रामा की सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि रहते हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वो सदा निश्चित ही रहते हैं। निश्चय है, नशा ही है, निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे में चिंता की कोई रेखा नहीं दिखाई देती, उन्हें सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य व संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात का क्वेश्चन नहीं उठ सकता। स्लोगन, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना, कोई बात सुनी, दूसरे को सुनाई, अपने मन की एटीट्यूड को मिक्स कर दिया, वायुमंडल खराब हो जाता है। सुनने सुनाने में भावना, अपनी भावना और अपना भाव को बदल देना, यह वायुमंडल खराब करना है। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना मेजॉरिटी बच्चों में अब ये संस्कार रहा हुआ है। फालतू संकल्प, व्यर्थ संकल्प का आधार मन है। मन में संकल्प चलते हैं ना, तो वो फिर मन मना भव नहीं होने देगा। व्यर्थ संकल्प मन मना भव नहीं होने देते, इसीलिए श्री मत रूपी लगाम टाइट करके मन घोड़े की, श्री मत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम।